ओम शांति। हमारे सामने ऐसे एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है जो बहुगुणी प्रतिभा संपन्न अष्टपैलू व्यक्तिमत्व है। आपने अपने मोटिवेशनल स्पीच से अनेक युवाओं के दिल पर राज्य किया है। ऐसे हमारी ये महान विभूति आदरणीय ब्रह्मा कुमार डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन भाई का हम एक हाथ से अभिवादन करते हैं। अभिवादन है, अभिवादन है। और साथ में मैं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों को निवेदन करती हूँ कि हमारे बीच के चैतन्य पुष्प को प्राकृतिक पुष्प के द्वारा स्वागत किया जाए। स्वागत करने आ रहे हैं अबोली बहन और योगिनी बहन, आदरणीय स्वामीनाथन भाई जी। आप पिछले 27 साल से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हो। आपका शैक्षणिक अध्ययन इस प्रकार का है, आप बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हो, डिप्लोमा इन डेल्टा हेलिंग में किया है, पीजी डिप्लोमा इन हेल्थ, एमएससी इन साइकोलॉजी, ऐसे बहुत सारी शिक्षाओं के पात्र हो। आपके विशेष कार्य हेतु आपको अलग अलग स्थान पर अलग अलग संस्थाओं ने नवाजा है, जैसे कि सनराइज पीस मिशन द्वारा सनराइज पीस अवार्ड से सम्मानित, रोटरी क्लब द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सलेंस एंड नेशन बिल्डर अवार्ड से सम्मानित, इंडिया पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पर स्थित सियाचेन बैटल स्कूल में प्रशिक्षण देने का आपको अद्वितीय मान सम्मान मिला है। अवेकनिंग और पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल द्वारा, जो ब्रह्मा कुमारी का है, प्रसारित किए जाने वाले अनेक कार्यक्रम में आप अपने विचार विमर्श में सहभागी होते हो, और इस आपके मोटिवेशन स्पीच से आज जनता बहुत खुश है और उसका बहुत लाभ ले रही है। इसके साथ साथ आपके कार्य की विशालता इस प्रकार है, कॉर्पोरेटर ट्रेनर आप 16 इयर्स से हो, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मीडिया, ट्रांसपोर्ट, यूथ, एजुकेशन, नर्सेस आदि आदि आयोजन किए हुए नेशनल सम्मेलनों में आपने सहभाग लेके अनेक आत्माओं का उद्धार किया है। आपके गौरव गाथा कार्य की जितना वर्णन करूं उतनी कम ही है। मैंने आपके देखी हुई यह विशेषता है कि आपके पास कार्य की जितनी विशालता और ऊंचाई है, उतने ही आप निर्माण स्वभाव वाले हो। आपकी वाक शैली ही आपकी जीवन शैली है। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण क्यों चाहिए, हम खुद ही सुनते हैं ना। आज का उनका टॉपिक है एनहांसिंग सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान बढ़ाए। आदरणीय स्वामीनाथन भाई जी,
ओम शांति। सभी प्यार से बोल सकते हैं ओम शांति, गुड इवनिंग, नमस्कार एंड जय हिंद। एट द आउटसेट इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू वेलकम ऑल ऑफ यू in this beautiful Saturday evening in this wonderful Harmony Hall. शुरू करने के पहले मैं जानना चाहूंगा आप में से ऐसे कितने भाई बहने हैं जो पहली बार ज्ञान सरोवर आए हैं, वो जरा हाथ उठाएं. Majority of you. How many of you have come here before? वो जरा हाथ उठाएं. Great. तो जब आप सभी को मैं देखता हूं और आपका स्वागत करता हूं तो मुझे 27 वर्ष पहले अपनी जीवन कहानी याद आती है. 27 years before in the year 1996, I was invited to a similar scientist engineers conference. और मैं आपकी तरह वहां बैठा था और उस समय मैं अगर अपने जीवन को अगर देखूं तो पढ़ाई तो किया हुआ था, जॉब भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि जीवन में कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है. क्या मुझे चाहिए था और कहां मैं ढूंढ रहा हूं, अ काइंड ऑफ अ कंफ्यूज्ड पर्सन. उसी दौरान जब मैं ज्ञान सरोवर पहुंचा तो ये 3 दिन का जब मैंने प्रोग्राम अटेंड किया 96 में, तो काफी जो मन में उलझन थी वो धीरे धीरे ठीक होने लगी. और मैं अपने जीवन को देखता हूं तो मुझे लगता है दैट कॉन्फ्रेंस वॉज बेसिकली अ वेरी ब्यूटिफुल टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ. मुझे लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, लक्ष्य क्या है, वो सब मुझे उस दिन समझ में आया 3 दिनों में. तो जो जो भाई बहने आज पहली बार यहां पर आए हैं ज्ञान सरोवर में, मैं ये महसूस करता हूं कि आप सचमुच बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा का बहुत प्यार भरा निमंत्रण आप सभी को मिला और उसको आपने बहुत सम्मान देते हुए आज यहां पहुंचे. It's also my beautiful honor to interact with you. Basically, when I see all of you wonderful people having vast experience in the domains of administration, so I feel little reluctant and hesitant to speak to you. तो मैं यहां कोई ज्ञान तो ज्यादा नहीं परोसूंगा, लेकिन हाँ, इस 27 वर्ष के सुंदर अनुभवों को with lots of humility and respect मैं आपके साथ शेयर करूंगा. So my dear friends, let's begin this session. और आज का सेशन मैं एक सुंदर एनेक्डोट के साथ स्टार्ट करता हूं, चुटकुले के साथ. और मैं चाहूंगा कि वेदर यू अंडरस्टैंड द चुटकुला यू डोंट अंडरस्टैंड द चुटकुला, अच्छी तरह मुस्कुराना और हंसना. कौन कौन मुस्कुराएंगे और हंसेंगे वो जरा हाथ उठाएं. वाह. क्योंकि जब आप मुस्कुराते हंसते हो ना तो मेरा जो तनाव होता है ना थोड़ा नॉर्मल होने लगता. ओके, द स्टोरी गोज ऑन लाइक दिस. With due respects to the countries and the characters involved, एक बार क्या हुआ, the Japanese president was on a trip to America. So before embarking on the trip, the officers of the Japanese president walked up to him and told him, "Sir, you are going to America for the first time?" He told, "Yes." Well, sir, how about communicating with the American president in English, sir? The Japanese president officers को कहा, "My God, मुझे English बोलना नहीं आता है." तो उनके ऑफिसर्स ने कहा, सर, हैवंट यू हर्ड द फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन. पहला इंप्रेशन एवरलास्टिंग इंप्रेशन होता है सर, तो इट विल लीड अ वेरी गुड इंप्रेशन इफ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश. तो जापानीज प्रेसिडेंट ने कहा, बट आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. तो उनके ऑफिसर्स ने कहा, सर, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री एक दो सेंटेंस बाय हार्ट कर सकते हो ना. तो जापानीज प्रेसिडेंट ने कहा, यस, देश की खातिर मैं एक दो सेंटेंस रट जरूर सकता हूं. बोलिए क्या बोलना है. बोले, सर, वेरी सिंपल, एज सून एज यू मीट द अमेरिकन प्रेसिडेंट Just ask a logical question. How are you? क्या पूछना है दोस्तों? Yes. So he is going to reply, I'm fine. In turn, he is going to ask you the same logical question. How are you? Sir, तब आप जवाब देना, same as you, sir. क्या जवाब देना है? हाँ, couple of sentences. अब Japanese person रटने लगे, How are you? How are you? How are you? पहली बार English बोल रहे, थोड़ा stress भी हो रहा था. How are you? How are you? How are you? As his motorcade was traveling towards the White House, how are you? How are you? How are you? He entered the White House. He saw the American president walking. How are you? How are you? और जैसे American president सामने पहुंचे, a Japanese president, full of stress, speaking English for the first time, instead of asking how are you, पूछ बैठे who are you? American president को लगा, वाह, मेरे अमेरिका में आकर, मेरे व्हाइट हाउस में आकर, यू हैव गॉट द गट्स टू आस्क मी हु एम आई. तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को लगा, मे बी आई हैव नॉट हर्ड हिम प्रॉपरली. फेस लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज किसी को भी समझ में आ जाता है. जापानीज पर्सन गॉट द क्लू, शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, हू आर यू. नाउ दैट वाज द लिमिट ऑफ इंडिसेंसी. एट दैट टाइम मिस्टर बिल क्लिंटन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. उन्होंने भी बहुत जोर से चिल्लाकर कहा, आई एम द हस्बैंड ऑफ हिलरी क्लिंटन, हू आर यू. एंड द जापानीज पर्सन रिप्लाइड, सेम एज यू सर. थैंक यू फॉर स्माइलिंग. और जब आप मुस्कुराते हो ना तो सचमुच आप इतने सुंदर और हैंडसम दिखते हो, राइट? बट बेसिकली मैंने आपको ये स्टोरी क्यों सुनाया, जस्ट टू इंक्रीज योर हैप्पीनेस इंडेक्स. इनफैक्ट देयर वाज अ पर्सन हुज नेम वाज नॉर्मन कजिन्स. ही वाज एडिटर ऑफ द सैटरडे रिव्यू फॉर ओवर 35 इयर्स. ही वाज डायग्नोस्ड विद अ वेरी पेनफुल एंड प्रोग्रेसिवली डीजेनरेटिव टिश्यू डिजीज, जिसका कोई उपचार और इलाज ही नहीं था. तो नॉर्मन कजिन्स अपने बेड में लेटे हुए थे अपनी मृत्यु का इंतजार करते हुए. उनका एक बचपन का दोस्त, क्लासमेट, फ्रेंड उनसे मिलने के लिए आया और नॉर्मन कजिन्स के साथ बैठा और देखा ही इज गोइंग टू डाई. तो उसको लगा कि मैं तो थोड़ा खुशी दूं. तो पहले तो एक दो चुटकुला सुनाया जैसे मैंने आपको सुनाया, लेकिन क्योंकि अ पर्सन हु इज वेरी क्लोज टू डेथ कैसे मुस्कुराएगा, तो और थोड़ा सीरियस हो गए. अब उसके दोस्त को लगा कि मैं इसको जाते वक्त मैं उसको कैसे सुख दूं, मैं क्या करूं. तो उसको अचानक याद आया और उसने क्या किया, अपने बचपन की सुंदर स्मृतियों को बताने लगे. जब स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, खेलते थे, कूदते थे, दौड़ते थे, दे यूज टू प्ले प्रैंक्स विद द टीचर्स. और जब ये बचपन के सुंदर दिन बताने लगे तो अचानक नॉर्मन कजिन्स के दोस्त ने देखा कि ही इज रिस्पॉन्डिंग. तो उसने अपने सारे स्कूल के क्लासमेट्स को मैसेज भेजा, प्लीज कम एंड मीट नॉर्मन. तो उनके सारे क्लासमेट्स ने यही पूछा कि व्हाट डू वी कम्युनिकेट टू अ पर्सन हु इज गोइंग टू डाई. तो बोला बस बचपन की अच्छी अच्छी स्मृतियों को उसको याद दिलाओ. तो उनके सारे क्लासमेट्स आए, नॉर्मन कजिन्स के साइड पर बैठे. दे सैट बिसाइड नॉर्मन एंड दे स्टार्टेड शेयरिंग देयर चाइल्डहुड स्वीट एक्सपीरियंसेस. एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मन कजिन्स पूरी तरह ठीक हो गए. And he has written two books for the entire medical fraternity. Number one, Anatomy of an Illness. And number two, The Healing Heart. वो अपनी किताब में लिखते हैं, It's no laughing matter, but smile your way to health, wealth and success. वो अपनी किताब में लिखते हैं, एक छोटा बच्चा सारे दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है. कितनी बार? जोर से बोलिए. और आप सभी मेरे जो दोस्त सामने बैठे हैं, वो सारे दिन में कितनी बार मुस्कुराते हो? हाउ मेनी टाइम्स यू स्माइल पर डे? मैंने मेनी इयर्स बिफोर व्हेन आई वाज अ फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग इन मुंबई यूनिवर्सिटी, तो मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा, भाई कितनी बार मुस्कुराते हो? एक खड़े होकर कहता, सर 3 times सर, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच, इवनिंग डिनर सर. अच्छा विद्यार्थी था तो मैंने कहा, मेरा मजाक उड़ाते? बोला नहीं सर. फिर मैंने कहा, ऐसे जवाब क्यों दिया? बोला सर देखा जाए तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमको 3 वक्त का भोजन तो मिलता है. इनफ गुड रीजन फॉर अस टू बी हैप्पी एंड स्माइलिंग. एंड बिफोर आई कुड कॉम्प्लीमेंट हिम, उसने बहुत अच्छा लॉजिक दिया. सर रीजन जम्मू कश्मीर फ्लड सर, उसमें उस समय जम्मू कश्मीर में बहुत आंधी तूफान आया था. यू माइट हैव सीन द ब्रेकिंग न्यूज इन वीडियोस, द एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स ड्रॉपिंग दोस फूड पैकेट्स. सर नीचे जो लोग भोजन का इंतजार कर रहे थे ना, कोई गरीब लोग नहीं थे सर, वो सारे देश और विदेश के पर्यटक थे जो जम्मू कश्मीर में साइट सीइंग के लिए आए थे. 1 हफ्ता भोजन नहीं मिला और उस दिन भोजन का महत्व समझ में आया. देन ही कंक्लूडेड हिज लॉजिक, सर शुड आई वेट फॉर एन इम्पेंडिंग डिजास्टर, अ कैलामिटी, अ सुनामी? सर मैं भूकंप का इंतजार करूं क्या? इस बात को महसूस करने के लिए कि मैं कितना ना सौभाग्यशाली हूं. इसलिए मैं अभी आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, जब ये 3 दिन के प्रोग्राम के बाद जब आप घर वापस जाएंगे, आपके बच्चों से, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन से आप बात करेंगे, तो आज तक हम लोग अपने बच्चों से, ग्रैंड चिल्ड्रन से यही बोलते थे, आई वॉन्ट यू टू बिकम सक्सेसफुल, आई वॉन्ट यू टू बिकम सक्सेसफुल. जब ये 3 दिन के बाद जाएंगे ना, तो अपने बच्चों से बहुत प्यार से कहना, बच्चों आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, मैं चाहता हूं आप खुश रहो. और जैसे ही ये डायलॉग आप अपने बच्चों को बोलेंगे ना, आपके बड़े क्रिएटिव और बुद्धिमान बच्चे पता है क्या करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे हाउ टू बिकम हैप्पी, सर्च बटन क्लिक. क्यों आज तक मेरे स्टूडेंट्स यही सर्च करते थे कि भारत का बेस्ट आईएम कौन सा है, मेरे स्टूडेंट्स ये सर्च करते हैं कि यूके का बेस्ट 10 यूनिवर्सिटीज कौन सा है, बट द रियल क्वेस्ट ऑफ डिस्कवरी वॉज ऑल अबाउट हैप्पीनेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं आफ्टर द बीटेक एंड एमटेक टोटली कंफ्यूज्ड, सर बीटेक के बाद हम क्या करें, सर एमटेक करें, एमएस करें, जीआरई करें, जीमैट करें, यूपीएससी जाएं, राइट, डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करें, अपना स्टार्टअप करें, क्या करें सर? तो मैं उनको हमेशा कहता हूं इट्स योर जर्नी, यू हैव टू फाइंड द डेस्टिनेशन। फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं बट आई विल हेल्प यू आउट, टेक अ 6 मंथ्स गैप, और ये 6 महीने में 2 चीज जरूर करना दोस्तों। मैं अपने बच्चों को कहता हूं, स्टूडेंट्स को कहता हूं, नंबर 1, गो एंड विजिट नेचर, प्रकृति के सानिध्य में रहिएगा। एंड नंबर 2, गो एंड मीट हैप्पी पीपल, नॉट सक्सेसफुल पीपल। सक्सेसफुल पीपल से आप मिल सकते हो लेकिन शायद उनके पास आपके लिए वक्त नहीं होगा, लेकिन गो एंड मीट हैप्पी पीपल और उनके दिनचर्या को देखिएगा। और ये विश्व में जितने भी हैप्पी लोग हैं आप देखेंगे कि दे आर नॉट ओनली वेरी सक्सेसफुल, लेकिन जब आप उनसे मिलेंगे तो लगेगा जैसे बहुत संपन्नता है उनमें, बहुत संतुष्टता है, एंड दे आर रियली लिविंग अ लाइफ विच वी ऑलवेज वॉन्टेड टू लिव। तो मैं चाहूंगा ये 3 दिन के बाद आप लोग अपने मुस्कुराहट बढ़ाकर, मेरे को बहुत लंबा लिस्ट चाहिए, और मैं चाहूंगा आप में से कुछ लोग, नेचुरली ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी सक्सेसफुल पीपल, लेकिन मोर देन दैट, राइट, आजकल के बच्चों को जो इंट्रैक्शन करना, दे वॉन्ट टू लुक एट हैप्पी पीपल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें याद आता अराउंड 1 मंथ बिफोर आई वॉज इन्वाइटेड टू इन चेन्नई, आई वॉज हैविंग अ सेशन विद मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। तो जिस गेस्ट हाउस में मैं रुका हुआ था, इट वॉज जस्ट बिसाइड IIT चेन्नई, और आप सबको पता है पिछले 3 साल में IIT चेन्नई इज रैंक नंबर 1 एज पर द गवर्नमेंट रैंकिंग। तो मैं 2 दिन का जब वहां सेशन ले रहा था तो दूसरे दिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, वन ऑफ द लेटेस्ट केस ऑफ एन IIT चेन्नई स्टूडेंट कमिटिंग सुसाइड। कल परसों के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा राजस्थान में देयर इज अ वेरी फेमस प्लेस कॉल्ड कोटा। कोटा एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां पर ये IIT के बच्चों का प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन, और पिछले 2-4 दिन में 1-2 बच्चों ने वहां पर कोटा इंस्टीट्यूट में आत्महत्या किया। ऐसा आत्महत्या करना नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट अ स्टूडेंट फ्रॉम कोटा इफ ही कमिट सुसाइड ही और शी हैज गॉट अ वैलिड रीजन कि भाई मुझे IIT में एडमिशन नहीं मिला। लेकिन एक IIT चेन्नई विच इज द बेस्ट IIT ऑफ अ कंट्री, अगर वो बच्चा अगर आत्महत्या कर रहा है, देयर इज समथिंग दैट वी नीड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, सर अल्बर्ट आइंस्टीन। कहते हैं आइंस्टीन का जो IQ जो था ना दोस्तों, इट वॉज 155+। हमारे IIT के बच्चों का IQ इज 105+। तो नेचुरली आइंस्टीन आपसे और हमसे थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान तो जरूर है। तो आइंस्टीन ने एक बहुत प्यारा सा डायलॉग कहा था, एंड आई कोट आइंस्टीन फॉर ऑल ऑफ यू। आइंस्टीन ने कहा था, इफ आई हैव गॉट 1 आवर टू सेव द प्लैनेट अर्थ, सिर्फ एक व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा की बात नहीं कर रहे थे आइंस्टीन। आइंस्टीन कहते हैं, इफ आई हैव गॉट 1 आवर टू सेव दिस प्लैनेट अर्थ, आई विल स्पेंड 55 मिनट्स एनालाइजिंग द प्रॉब्लम एंड ओनली 5 मिनट्स टू गेट ऑन टू द सोल्यूशन। सारे पृथ्वी की रक्षा सुरक्षा अगर मुझे करना है और उसके लिए मेरे पास 60 मिनट का टाइम है, तो 60 मिनट में 55 मिनट में उस बात को एनालाइज करूंगा कि प्रॉब्लम का कारण क्या है, सिर्फ 5 मिनट उसका समाधान और निवारण करूंगा। एंड वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट आइंस्टीन कहते हैं, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, आइंस्टीन कहते हैं, नो प्रॉब्लम, सभी बोलिए, कैन बी सॉल्व from the same consciousness that we have created it. एक प्रॉब्लम अगर है ना दोस्तों तो उसकी कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे ना, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। और उस कॉन्शियसनेस को चेंज करना ये सबसे बड़ी चुनौती है, इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस। इसे कल से शाम से जो इनॉग्रेशन हुआ और हर सेशन में हर फैकल्टी मेंबर्स, इट मे लुक वेरी रिपीटेटिव, पर इतने वर्षों का जो कॉन्शियसनेस है ना उसको चेंज करना टाइम लगता है। राइट और वही हर फैकल्टी मेंबर्स ट्राई करेगा. हमारा टॉपिक भी यही है. एंड व्हाट इज द शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस? द शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम हाउ आर यू टू हु आर यू. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें याद आता है बहुत वर्ष पहले वी वर इन्वाइटेड टू द मथुरा रिफाइनरीज, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, वन ऑफ द महारत्ना कंपनीज मथुरा में. तो जब हम वहां पर गए तो वो एचआर का जो बंदा था उन्होंने बहुत प्यार से हमारा स्वागत किया. ही वॉज अ थरो जेंटलमैन. और उन्होंने कहा, स्वामीनाथन आपको मथुरा रिफाइनरीज में ट्रेनिंग के लिए हार्दिक स्वागत है. तो हमने कहा थैंक यू वेरी मच, लेकिन हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भाई कहां पर है? हु इज द टारगेट ऑडियंस? तो उन्होंने कहा वी हैव गॉट अ बैंडविड्थ ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. बोले जैसे ए वेरी यंग ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स, जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज हैं, वो सारे भारत के यूनिवर्सिटीज के बड़े बुद्धिमान बच्चे आए हैं, उनका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, तो उनका एक ट्रेनिंग पीरियड ट्रेनिंग चल रहा है. और द लास्ट बैंडविड्थ इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर दोज पीपल हु आर गोइंग टू गेट रिटायर्ड इन द नेक्स्ट 6 months टू 1 year. अगले 6 महीने या 1 साल में जो रिटायर होने वाले हैं उनके लिए भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है. हमने कहा वाओ, नए बच्चों को ट्रेनिंग देते हो ये तो समझ में आता है, लेकिन जो रिटायर होने वाले उनके लिए आप ट्रेनिंग रखते हो? बोला हां जी. तो मैंने कहा आप मुझे कहां भेजोगे भाई? बोला स्वामी भाई ये जो बच्चे अभी भी आए हैं ये बहुत वर्ष रहेंगे इंडियन ऑयल में, आप कभी भी मिल सकते हैं, बट वी आर सेंडिंग यू टू दैट ग्रुप हु आर गोइंग टू गेट रिटायर्ड इन द नेक्स्ट 6 months टू 1 year. मैंने कहा वाओ, फिर कितने दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है? तो बोला 2 days ट्रेनिंग प्रोग्राम, आज पूरा हो गया है, कल आपका 1 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है. मैंने कहा कितने ग्रुप, कितने लोग हैं? बोला 40 plus 40 people are those people who are working in India now, going to get retired, or 40 is their family members. If husband is working, the wife has to attend. If the wife is working, the husband has to attend. 80-90 ka group hai. Main kaha acha aapka syllabus kya hai bhai, aaj kya aapne unko sikhaya? Bola aaj subah subah ek doctor aaye the. Main kaha acha. Bola doctor ne ye sikhaya ki retirement ke baad apna health ka kaise dhyan rakhte. मैं कहा हां ये तो बहुत जरूरी है. फिर मैंने पूछा हु इज द सेकेंड फैकल्टी मेंबर? बोला सेकेंड फैकल्टी मेंबर एक अकाउंट्स मैनेजर आए थे. हमने कहा अच्छा, उन्होंने क्या सिखाया? बोला उन्होंने सबको ये बताया कि भाई रिटायरमेंट के बाद कितना धन आपको मिलेगा, तो उसका सही आप है ना, हाउ डू यू डू द राइट इन्वेस्टमेंट. मैं कहा हां ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं कहा तीसरे फैकल्टी कौन थे? बोला अभी अभी उनका सेशन खत्म हुआ है. मैंने कहा वो कौन थे? बोला तीसरे फैकल्टी एडवोकेट कम लॉयर थे. मैं कहा डॉक्टर समझ में आया, फिर अकाउंट्स मैनेजर ऑल्सो अंडरस्टूड, ये एडवोकेट कम लॉयर क्यों आए थे? बोला वो अभी अभी सबको ट्रेनिंग दे रहे थे कि अपना विल पेपर कैसे बनाते हैं, वसीयत कैसे बनाते हैं. तो कुछ समय क्या था आप तो टक हो जाओगे, फिर बच्चे डिशुम डिशुम करेंगे. मैं कहा वाओ, कितना सोच समझ कर ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है. फिर मैंने उस एचआर बंदे से पूछा भाई कल मुझे क्या ट्रेनिंग कराना है? तो ही लुक्ड एट मी लिटिल सरकास्टिकली. बोला सर आप इनको क्या सिखा पाओगे सर, ये लोग जिनसे आप मिलने वाले हो ना कल, ऐसे लोग हैं जो करीब 30-40 वर्ष है ना इंडियन ऑयल में सर्विस कर चुके सर, हजारों करोड़ों का प्रोजेक्ट मैनेज किए, व्हाट आर यू गोइंग टू ट्रेन देम? तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा सर आप ही ने मुझे बुलाया है, कल पूरा दिन कर दिया तो व्हाट आर आई, यू हैव टू टेल मी ना. बोला हां, उनको आपको जो बताना है द शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस From how are you to who are you? मैं कहा हाँ, this I am very very comfortable. तो दूसरा दिन जब हम वो ग्रुप के साथ मिले तो 90 का एक बहुत सुंदर ग्रुप था. तो मैंने वो जापानीज प्रेसिडेंट की कहानी सुनाई. फिर जब सब लोग बड़े प्यार से मुस्कुराए, फिर मैंने उनसे पूछा क्योंकि मेरा सिलेबस ये है, तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग हाउ आर यू लाइक द जापानीज प्रेसिडेंट विथ लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, हु आर यू? भाई आप कौन हो? तो कोई जवाब ही नहीं देना. भाई बोलिए बोलिए, आप कौन हो? हु आर यू? नो आंसर. तो जो एचआर का बंदा जो था ना, ही वॉज ऑल्सो पार्टिसिपेंट एंड ही बिकेम ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो मैंने उनको ही बोला, मैंने कहा सर और कोई आपके फ्रेंड्स और कलीग्स तो जवाब नहीं दे रहे हैं, अब आप ही जवाब दीजिएगा, हु आर यू? बोला हां मैं करता हूं, खड़े होकर बोल दिए. बोला आई एम द वाइस प्रेसिडेंट एचआर. मैं कहा नहीं सर, वो आपका पोस्ट है, आप कौन हो? आई एम द वाइस प्रेसिडेंट एचआर. मैं कहा नहीं सर, वो आपका डेजिग्नेशन है, आप कौन हो? आई एम द वाइस प्रेसिडेंट एचआर. कुर्सी नहीं छोड़ रहे अपनी. फिर मैंने पूछा, सर आप कब रिटायर होने वाले हैं? बोला, इन द नेक्स्ट 4-5 months आई एम गोइंग टू रिटायर. मैंने कहा, रिटायर होने के बाद फिर आप क्या बनेंगे? तो सोचकर कहा, रिटायर होने के बाद रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट HR. तो मैंने उस सभा को कहा, मैंने कहा, अगर आपको लगता है कि आप सारा अपना सिस्टम को, इस इंडस्ट्री को मैनेज कर आपको स्ट्रेस हो रहा है ना, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है. तो मैंने कहा, मार्क माय वर्ड्स, वी विल ऑल बी एक्सपीरियंसिंग रियल स्ट्रेस द फर्स्ट डे ऑफ रिटायरमेंट. तो पीपल वर नॉट कन्विंस्ड, उनका चेहरा देखकर मुझे समझ में आया. मैंने कहा, जस्ट एक्स्ट्रापोलेट, आगे की यात्रा पर जाइए. रिटायर होने के पहला दिन, जैसे ही सूर्योदय होता है, आप उस दिन को याद करिएगा. आप आराम से लेटे हुए हैं क्योंकि ऑफिस जाना नहीं है. तो आपकी पत्नी आकर आपको उठाएगी, हेलो हेलो उठो. अब एक आंख खोलकर देखते हो, भगवान क्यों उठा रहे हो, अरे ऑफिस नहीं जाना क्या? तो आप अपनी पत्नी से कहेंगे, नहीं नहीं मैं रिटायर हो गया हूं. जैसे ही आपको, तो ऑफिस नहीं जाएंगे? नहीं. अब जैसे ही आप बोलेंगे, अब पत्नी का बीपी बढ़ेगा. तो क्या करोगे सारा दिन? और उसके मन में यही चिंतन चल रहा है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दिस एक्सपीरियंस रिसोर्स, मैं क्या करूं इसका? नहीं कुछ नहीं, बैठूंगा, चाय पीऊंगा, कॉफी पीऊंगा. कितना कप चाय पियोगे? कि ऑफिस में बेल बजाते थे तो चाय आ जाता था. अब वो टू डू लिस्ट बना के देती है, एक काम करो उठो और पोतरे को स्कूल छोड़कर आओ, और आते वक्त थोड़ा सब्जी खरीद कर आना. एक दादा या नाना को अपने पोतरे के उस कोमल हाथ को पकड़ते हुए, उसके वो बैग को अपने कंधे में लगाते हुए, एक आनंद की अनुभूति है दोस्तों. पोतरे को टाटा बाय बाय किया, आते वक्त सब्जी खरीदने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सब्जी खरीदकर जब हम घर पहुंचेंगे, नाउ दैट इज द टाइम व्हेन द रियल स्ट्रेस बिगिंस. रियल स्ट्रेस वहां स्टार्ट होता है. क्या अंतर हुआ एक सूर्यास्त में और एक सूर्योदय में? क्योंकि दोस्तों, एक दिन पहले हम लोग इतने बिजी थे एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में, कि आपको और हमको श्वास लेने के लिए टाइम नहीं था. और अचानक व्हाट टू डू, इट्स अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन मार्क. बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. इससे हमारा जीवन सिर्फ ऑफिस में नहीं होता, इट्स एक्चुअली वर्क लाइफ इंटीग्रेशन. पोस्ट कोविड सिचुएशन, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ सेकंड इनिंग्स आल्सो. आज के वर्तमान समय पे आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं, चाहे हेल्थ पर, चाहे म्यूचुअल फंड्स पर, चाहे फाइनेंस पर, आप उस भविष्य को देखकर वर्तमान को, वर्तमान की प्लानिंग करते हो. उसी तरह अ शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो शुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रायोरिटी इन अवर एजेंडा, टू डू लिस्ट में. एक बार एक बैंक के रिटायर्ड जनरल मैनेजर रिटायर होने के बाद बैंक में पहुंचे, तो बहुत लंबी लाइन थी भाई. तो लाइन में खड़े हो गए, धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ती गई. तो जो काउंटर में जो ऑफिसर बैठा था ना, ही वॉज अ न्यूली अपॉइंटेड ऑफिसर. तो ही वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द पूर्व जनरल मैनेजर. जब वो काउंटर के नजदीक पहुंचे, तो उस ऑफिस में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इमीडिएटली उस पूर्व GM को पहचान पाए. सर सर सर, आप लाइन में क्यों खड़े हो? सर प्लीज कम इन. विद लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट उनको अंदर बुलाया गया. दे ऑफर्ड हिम अ सीट, गेव हिम अ कप ऑफ टी. बोले, सर आप लाइन में क्यों खड़े थे? सर आप आकर यहां सीधे बैठते थे, आप इसी बैंक से रिटायर हुए सर. जब ये काउंटर के ऑफिसर को पता चला कि ही इज द पूर्व GM, तो वो भी आए और सर को कहा, सर आई रियली आई एम सॉरी, आई सिंसियरली अपोलोजाइज, आई वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई यू, क्योंकि मैं यहां न्यूली अपॉइंटेड हूं. बट यू कुड हैव रिवील्ड योर आइडेंटिटी ना, कि आप कौन थे, आप पूर्व DGM, पूर्व GM थे, आप बता सकते थे ना, आपने क्यों नहीं बताया सर? तो पूर्व GM ने मुस्कुराते हुए उस यंग ऑफिसर को कहा कि नहीं नहीं बच्चे, मैं अपने आप को तैयार कर रहा था. तो उस ऑफिसर ने कहा, सर आप किस बात की तैयारी कर रहे थे? तो उसने कहा, देखिए अभी इस ऑफिस में कुछ लोग हैं जो मुझे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी रिटायर हो जाएंगे, फिर तो मुझे लाइन पर ही खड़ा होना पड़ेगा ना. और फिर उन्होंने इस यंग ऑफिसर को कहा कि मैंने बहुत वर्ष बैंक में काम किया है, बहुत बार मैंने ट्रेनिंग ली है, बहुत बार मैंने ट्रेनिंग कराई है, लेकिन फर्स्ट डे ऑफ रिटायरमेंट के बाद मैंने ये महसूस किया, विच आई वुड लव टू शेयर विथ यू, तो यंग ऑफिसर ने कहा सर प्लीज शेयर योर वर्ड्स ऑफ विजडम टू विथ मी. तो उसने बहुत अच्छी बात बताई. उन्होंने कहा इन द गेम ऑफ चेस, चेस शतरंज के गेम में, खेल में राजा का और प्यादा का अपना एक जगह होता है, लेकिन जैसे ही ये गेम पूरा होता है राजा और प्यादा एक साथ डिब्बे के अंदर, एक साथ डिब्बे के अंदर, राइट? और दोस्तों ये जो मैं पूरा संदर्भ बता रहा हूं, मैं और किसी कहानी नहीं सुना रहा हूं. आई एम शेयरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ माय ओन फादर. मेरे जो पिताजी जो थे ना, ही वाज इन सिविल डिफेंस. चार बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया, राइट? और हमेशा ये महसूस करते थे कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा ना तो आई रेस्ट, रिलैक्स, रिजुविनेट. जब रिटायर हुए तो भारत सरकार ने उनको बहुत धन दिया. तो उन्होंने केरला में एक छोटी सी प्यारी सी नदी के नजदीक एक बहुत बड़ा बंगलो बनाया और वो और मम्मा बड़े खुशी से रहने लगे. कुछ समय के बाद मम्मा गुजर गई एंड ही वॉज ऑल अलोन फॉर 8 years टिल माई सिस्टर ज्वाइंड हिम नाउ, राइट? लोनलीनेस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम. दोस्तों ये जो लोनलीनेस था ना, ये अक्सर करके पोस्ट रिटायरमेंट लोगों को अनुभव होता था, लेकिन कोविड के बाद ये देखा गया कि ये छोटे बच्चों को भी हमको सिखाना पड़ेगा. जब छोटे बच्चे से लेकर लोग जब क्वारंटाइन होने लगे, इससे लोनलीनेस को बचाने के लिए, बचने के लिए शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम हाउ आर यू टू हु आर यू, दिस इज वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप कौन हैं, तो क्या जवाब देंगे? आज सुबह का सत्र से शुरू हुआ. इनफैक्ट कल का मैं इनॉग्रेशन प्रोग्राम भी अटेंड कर रहा था, तो वहीं से ही ये इनपुट देना आरंभ किया. अ शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस. एक होता है दोस्तों नॉलेज, दूसरा होता है अप्लाइड नॉलेज. इंफॉर्मेशन आप सबको है, जैसे कभी कभी हमारे सेशन को सुनकर आपको बोर भी होता होगा, जैसे फिजिक्स होता है उसके बाद अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री अप्लाइड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स. उसी तरह इंफॉर्मेशन आपको और हम सबको है, लेकिन अब जरूरत है कि इसको धीरे धीरे हम अपने जीवन में हर दिन अप्लाई करें, राइट? मुझे याद आता है एक मम्मा ने मुझे फोन किया और कहा कि स्वामी भाई आप मेरे बेटे को तो जानते हो. तो उस बेटे को मैं बचपन से देखता था, वेरी नाइस बॉय, फुल ऑफ गुड मैनर्स, वेरी हार्ड वर्किंग बॉय. तो मैंने कहा हाँ हाँ मैं जानता हूं. बोला आपको पता है कि ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. मैं कहा यस आई वॉज अवेयर. बोला सर द रिजल्ट इज 4-5-6 बार उसने अटेम्प्ट किया बट ही वॉज नॉट एबल टू सक्सीड. अभी ऐसी हालत हो गई स्वामी भाई कि वो घर से बिल्कुल रूम से बाहर नहीं निकलता है, किसी से बात नहीं करता है, एकदम पूरा समय रूम के अंदर. और सच्ची बात बताया उसने बहुत बहुत मेहनत की थी, ही रियली पुट इन ऑल आउट एफर्ट्स, बट सफल नहीं हुआ वो. ही वॉज नॉट एबल टू क्रैक द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम. तो मैंने कहा चलो मैं आपसे मिलता हूं. बोला एक बार आप उनसे फोन पे बात करेंगे ना, दैट ऑल्सो विल बी वेरी गुड, और आपका फोन वो जरूर उठाएगा. मैं कहा ठीक है. तो मैंने उस बच्चे को रिंग किया, द यंग बॉय, नाइस बॉय. ओम शांति स्वामी भाई, सर कैसे हो? मैंने कहा मैं तो बहुत अच्छा हूं भाई, आप कैसे हो? बोला मम्मा ने तो मेरी कहानी बताई थी ना, बताई होगी. मैंने कहा हाँ. बोले सर मैंने सचमुच जितना मैं कोशिश कर सकता था उतना मैंने कोशिश किया सर, लेकिन भगवान ने मेरे को मुझे हेल्प क्यों नहीं किया? व्हाई आई वॉज नॉट एबल टू सक्सीड यूपीएससी सिविल सर्विस. मैं कहा अच्छा आपका लक्ष्य क्या था, आपका सपना क्या था? बोला सर बचपन से मेरा सपना था कि मैं अपने नाम के अगेंस्ट पे आईएएस देखूं. जैसे जैसे मैं अटेम्प्ट करता रहा तो मुझे लगा थोड़ा टफ हो रहा है, तो मैंने कहा आईएएस नहीं तो आईपीएस, आईपीएस नहीं तो आईएएस तो आने चाहिए. 5-6 अटेम्प्ट कर लिया सर, लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू सक्सीड. मैं कहा माई डियर फ्रेंड अगर आपका सपना ही ये था कि आपके नाम के अगेंस्ट में आईएएस लगे, तो एक काम करो ना, अपना एक नया नेम प्लेट बना दो और अपने नाम के नीचे आईएएस कॉमा आईपीएस आईएफएस डाल दो, लटका दो. बोला सर ऐसे कैसे कर सकते हैं सर, लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? मैं कहा हाँ लोग तो जरूर पूछेंगे, तो जब लोग पूछेंगे ना तो आप कौन हो बता दीजिएगा, बोलो कि मैं आईएएस हूं, मैं आईपीएस हूं, मैं आईएफएस हूं. बोला सर ऐसे कैसे कह सकते? मैं कहा दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, IAS, I am the soul, मैं आत्मा हूँ. This is the reality. IPS, I peaceful soul. IFS, मैंने कहा आप फुल फॉर्म जरा ट्राई करो. IFS, I am soul तो समझ में आ गया. I peaceful soul समझ में आ गया. IFS क्या होगा, आप लोग थोड़ा ट्राई करिएगा. I कौन, अरे वाह तालियां बजाइए सर के लिए, है ना. आई फ्री सोल, आई फॉलो दिस सोल, उसने बहुत सारे उसके एब्रीवेशन बताए. लेकिन आपका जवाब सर मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने आप को स्वतंत्र करना. आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे, करेक्ट. अब ये शिफ्ट ऑफ कॉन्शियस नहीं होता है तो हम कभी आजादी महसूस ही नहीं कर सकते. जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि एक व्यक्ति, एक ड्राइवर भाई है जो हमेशा अपना गाड़ी चलाता रहता है. He spends his maximum time running that vehicle, car. पूरा समय वो गाड़ी में ही रहता है, maximum time. अब गाड़ी चला 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 कर उसको लगता है मैं ही गाड़ी हूं, I am this vehicle. कुछ फर्क पड़ेगा जीवन में, फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कितनों को लगता है फर्क पड़ेगा, वो जरा हाथ उठाओ. कितनों को लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हाथ उठाओ. कितनों ने दोनों में हाथ नहीं उठाया, अब मुस्कुराते हुए हाथ उठाओ. मैं आजादी का अमृत महोत्सव है, कोई जबरदस्ती है क्या? आई अप्रिशिएट योर स्वतंत्रता है. अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा. अब 3 दिन से आपको ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट कर रहे हैं. अ शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम हाउ आर यू टू हु आर यू. A shift of consciousness from matter consciousness to energy consciousness. अपने आप को हम जो matter समझते हैं, और ये हमारे शास्त्रों में 5000 वर्ष पहले से लिखा है. कोई ब्रह्मा कुमारी पहली बार नहीं दे रही आपको. 27 वर्ष पहले जब हम आपके स्थान पर बैठे थे, हमने भी ये बहुत सुना था. इन्होंने 3 दिन में महसूस किया कि भाई इन्फॉर्मेशन तो है, अप्लाई हम कभी नहीं कर रहे उसको. अप्लाई करना बहुत बहुत जरूरी है. तो ड्राइवर भाई गाड़ी चला 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 कर फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, अब आप लोग एनालाइज करिएगा. तो एक दिन मैं उनको कहता हूं कि भाई मुझे अबू रोड से ज्ञान सरोवर आना है, कॉन्फ्रेंस चल रहा है, आप मुझे जरा छोड़ देंगे? हाँ सर जरूर छोड़ देंगे. अब वो आता है यहां पर ज्ञान सरोवर कैंपस में आता है, तो मैं कहता हूं मेरे 1.5 घंटा का लेक्चर है एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फ्रेंस में, फिर मुझे नीचे शांतिवन, हमारा बहुत सुंदर कैंपस है, तो वहां वापस जाना है. हाँ सर आप आराम से 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना समय अच्छा लेक्चर लेकर आ जाइए. तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप गाड़ी में क्यों बैठे हो, गाड़ी में बैठकर गुटखा खाते रहते हो, एक काम करो आप मेरे साथ चलो और मैं जो लेक्चर ले रहा हूं उसको बैठ के सुनो. तो बोला सर थैंक यू वेरी मच लेकिन मैं नहीं आ सकता हूं. मैंने कहा क्यों नहीं आ सकते भाई, हॉल में बहुत सारे चेयर खाली हैं और ब्रह्मा कुमारी इसमें तो कोई भी आ सकता है, कोई फीस भी नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम होता है, आप आइए ना. बोला सर मैं आना चाहता हूं लेकिन मैं आ नहीं सकता हूं. बोला भाई क्यों नहीं आ सकते हो, आप आइए ना. बोला नहीं सर मैं चाहते हुए भी नहीं आ सकता हूं. कमाल है. मैंने कहा भाई चाहते हो क्यों नहीं आ सकते, हु इज स्टॉपिंग यू? बोला सर कैसे आएंगे, फिर वो सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, फिर वो रैंप है सर, फिर हारमोनी हॉल का दरवाजा है, कैसे आएंगे हम? मैं क्यों, बोला सर गाड़ी कैसे जाएगी वो रैंप में, वो सीढ़ी कैसे? मैंने कहा गाड़ी को लेकर आने के लिए किसने कहा भाई, आप आओ ना. तो फिर मुझे समझ में आता इसका प्रॉब्लम यही है. तो मैं यहां पे आता हूं, 2-3 सेवाधारी भाइयों को लेकर जाता हूं, उसका दरवाजा खोलता हूं, उसको पकड़ता हूं, जैसे ही बाहर निकालता हूं, वाओ, दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज एक्सपीरियंसिंग आजादी का अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता. हम लोग इतने जकड़ गए हैं इन टू थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स. वन इज द एक्वायर्ड सेल्फ. जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, अरे ये मेरा राजा बच्चा है, ये मेरी रानी बच्ची है, बॉय गर्ल. फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते नेम, पोस्ट, पोजीशन, डेजिग्नेशन, क्वालिफिकेशन, कास्ट, जेंडर, इतना लेबल्स हमारे ऊपर चढ़ जाता है, विच इज कॉल्ड एज एन एक्वायर्ड सेल्फ. हमको जो थोड़ा सा मेहनत करना है, शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस इज फ्रॉम द एक्वायर्ड सेल्फ टू द रियल सेल्फ. रियल सेल्फ, ये जो जितना भी एक्वायर किया ना, ये मेरा रियलिटी नहीं है. रियलिटी इज आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस फिजिकल कॉन्शियसनेस. एंड दैट्स आवर टॉपिक, एनहेंसिंग सेल्फ एस्टीम. जब हम एक्वायर्ड सेल्फ की स्मृति में रहते हैं ना, तो ईगो आ जाता है, मैंने इतनी पढ़ाई की है, मेरा इतना क्वालिफिकेशन है. लेकिन जो रियल सेल्फ पर जब हम रखते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड ए सेल्फ एस्टीम. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड सेल्फ एस्टीम? ईगो इज स्मृति ऑफ समथिंग विच इज नॉट एवरलास्टिंग, हमेशा के लिए नहीं रहेगा वो. लेकिन रियल सेल्फ में जब हमारी स्मृति रहती है मैं कौन हूं, तो हमेशा वो खुशी, हमेशा वो आनंद, हाई स्टेट ऑफ सेल्फ एस्टीम. तो एक काम करिएगा दोस्तों, जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना, दो तीन दिन का, जब आप घर जाएंगे तो आपके बच्चे और पोते आपका खिला हुआ चेहरा देखकर पूछेंगे, मम्मा आपका चेहरा इतना खिला हुआ क्यों है? तब कहेंगे, बच्चे वहां ज्ञान सरोवर में ब्रह्मा कुमारी का प्रोग्राम था ना, वहां मुझे समझ में आया कि मैं कौन हूं. तो छोटू पूछेगा, मम्मा आप कौन हो? तो एक काम करना, अपना राइट हैंड बच्चे के सर पर रखना और बहुत खुशी से, बहुत प्यार से बच्चे को देखना और बहुत प्यार से उस बच्चे को पूछना, माय डियर चाइल्ड, डू यू नो हु आर यू? तो बच्चा पूछेगा, मम्मा मैं कौन हूं? हाथ रखे रहना, लेट द फ्लो ऑफ एनर्जी ट्रेवल. और बहुत प्यार से आप पूछना, बच्चे आपको मालूम है आप कौन हो? तो छोटू पूछेगा, मम्मा मैं कौन हूं बताइए ना. तो बहुत प्यार से जवाब देना. सभी बोलिए, बच्चे. बोलो बच्चे, थोड़ा जोर से बोलिए. अरे डराओ नहीं ना छोटू को, थोड़ा प्यार मोहब्बत से बोलो, बच्चे, मीठे बच्चे, आप हो तारे जमीन पर. हाँ, फिर छोटू पूछेगा, मम्मा फिर आप कौन हो? तो क्या जवाब देंगे? इंग्लिश में उसको जवाब दीजिएगा. सभी बोलिए, आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. यस, आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. और आजकल बच्चों को स्टार बनना बहुत अच्छा लगता है, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, सुपर स्टार. उस दिन मुंबई में प्रोग्राम कर रहे, एक खड़े को कहता, सर रॉक स्टार ऑल्सो सर. मैं कहता, को जो स्टार बनना है बन. सो द होल फोकस वॉज शुड बी ऑन द सेल्फ. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूपीएससी लेटेस्ट, अभी कुछ समय पहले मेरे ख्याल से एक हफ्ता 10 दिन के पहले रिजल्ट आया था यूपीएससी सिविल सर्विस का. लाखों बच्चे लिखते हैं और उसके बाद एक हफ्ते तक तो न्यूज़पेपर्स, यूट्यूब, मीडिया, फेसबुक वॉज द स्टोरी ऑफ ऑल सक्सेसफुल पीपल. लाखों बच्चों में अप्रोक्सीमेटली, आई एम गिविंग एन अप्रोक्सीमेट नंबर, 500-600 का सिलेक्शन होता है. रिमेनिंग जो लोग हैं, इसे वी शुड नॉट बी जस्ट टीचिंग देम द टेक्निक ऑफ विनिंग, वी शुड ऑल्सो बी टीचिंग देम हाउ टू एक्सेप्ट द डिफीट विद ग्रेस एंड मूव अहेड इन लाइफ. ये बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इतना सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ेंगे, इतना डिप्रेशन बढ़ेगा. तो मुझे याद आता, बहुत वर्ष पहले जब मैं अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, तो आई यूज्ड टू टेक अ सब्जेक्ट विच इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स. थोड़ा कठिन विषय था, तो 3-4 महीने मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता था. और 4 महीने के बाद जब मेरे स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में जाते थे, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता, बच्चों जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिला, 10 questions और एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं मालूम, उस वक्त भी अगर आप मुस्कुरा सकते हो तो जीवन की हर परीक्षा आप जरूर पास हो जाएंगे. तालियां क्यों बजाई? वैसे बजाना तो चाहिए था. अभी कारण सुनिए, फिर जोर से तालियां बजाइए. क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है. फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है. जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुरा सकते अगर तो वह जिंदगी. अब जोर से तालियां बजाइए. तो एक व्यक्ति सफल है या नहीं है कैसे पता चलता है? कोई मुझे सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है. स्वामीनाथन इज सक्सेसफुल और ए फेलियर, आई डू एन ऑटो अटेस्टेशन. और ये पता कब चलता है? व्हेन वी आर इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ, जब लेटे हुए हैं, जाने का समय आ गया है. और उस समय स्वामी भाई को पता, मैं कोई भी टाइम ओम शांति हो सकता हूं. और उस समय मैं अगर अपनी जीवन रूपी यात्रा को मैं देखता हूं, और इस सुंदर जीवन रूपी यात्रा को देखकर मुझे लगता है, वाह मेरा जीवन वाह, अगर ये संकल्प आ गया, दूसरों की नजर में मैं कितना सफल हूं या असफल हूं, इट डज नॉट मैटर मच, लेकिन वो अंतिम क्षण अगर मैंने अपने जीवन के सुंदर यात्रा को देखकर अच्छा फील किया, तो यस, आई एम ए वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सनालिटी। इट्स नॉट, इससे उस दिन मैं योगा डे में प्रोग्राम अटेंड कर रहा था, तो किसी ने पूछा इस राज्यों का द आर्ट ऑफ लिविंग, तो हमने कहा बहुत गुरु महात्माएं हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, लेकिन परमात्मा जो सदगुरु है ना, वो सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाते, इट ऑल्सो टीचेस द आर्ट ऑफ लिविंग। अब घर जाना है, इट्स नॉट सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ हैप्पीनेस, इट इज सेलिब्रेटिंग द लास्ट मिनट ऑल्सो विथ हैप्पीनेस। हर पल हर क्षण इतने खुशी और आनंद के साथ जिए हम, उसका जो प्रोसेस है उसकी विधि जानना बहुत बहुत जरूरी है। जब हम सेल्फ को समझ लेते हैं कि मैं एक एनर्जी हूं, इससे हमको क्या फायदा होता है? सिंस ऑल ऑफ यू आर प्रोफेशनल्स एंड यू आर इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो अक्सर जब हम एडमिनिस्ट्रेशन पे रहते हैं तो हमको हमेशा एक लक्ष्य रहता है, कैन माई सेल्फ और माई टीम और माई डिपार्टमेंट बी मोर प्रोडक्टिव एंड मोर एफिशियंट। हम अपनी कार्य कुशलता, अपनी कार्य क्षमता को जितना हो सके बढ़ाएं और रिजल्ट्स को दिखाएं। वेरी गुड लक्ष्य, बट वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज वी कैन ओनली बी प्रोडक्टिव एंड एफिशियंट वेन वी आर इफेक्टिव। इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी एंड एफिशियंसी इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिवनेस। एक इंडिविजुअल की पावर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट? इसलिए ये जो पावर स्टेशन है ना, आत्मा इज द पावर स्टेशन। सुबह से शाम तक हम जो भी कर्म कर रहे हैं, वेदर वी आर डूइंग फिजिकल कर्म और वेदर वी आर डूइंग ए मेंटल कर्म, इट रिक्वायर्स एनर्जी, शक्ति की जरूरत है। जैसे ये आप लोग ये लाइट दे सकते हैं, लाइट में वो एनर्जी पहुंच रही है इसलिए वो लाइट जल रहा है, एंड इट इज डिजाइन फॉर ए पर्टिकुलर वोल्टेज। अगर उसको वो वोल्टेज नहीं मिलेगा ना तो तड़पड़ाएगा और टक करके बंद हो जाएगा। उसी तरह आत्मा इज अ पावर स्टेशन। सारा दिन मुझे जो काम करना है उसके लिए आत्मा को ये पावर चाहिए, शक्ति चाहिए काम करने के लिए। इस संसार में हर व्यक्ति मेडिटेशन नहीं करता है, लेकिन प्रकृति ने एक बहुत सुंदर सा गिफ्ट हमें दिया है, जिस गिफ्ट के द्वारा हम लोग हर दिन चार्ज हो जाते हैं और हम लोग अपने आप को कॉन्शियसनेस, हाउ आई यू टू हु आई माई में आ ही जाते हैं। और आप सबको पता है प्रकृति का वो सुंदर गिफ्ट कौन सा है दोस्तों? कौन सा गिफ्ट है वो सुंदर सा? हाँ, और वो है स्लीप, नींद। ऐसे जब घर जाएंगे ना और आपके बच्चे सोते हुए देखेंगे ना, तो उन पर गुस्सा नहीं करना, बहुत प्यार से बुलाना। मुझे पहले जब मेरे क्लास में कोई स्टूडेंट सोता था तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन जब से ब्रह्मा कुमारी इसमें मैं आया हूं, वाओ, मेरे क्लास में कोई सोता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल को लोगों को नींद ही नहीं आ रही है, राइट? तो जो गहरी नींद होता है ना, जब हम लोग गहरी नींद पर जाते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ डेल्टा स्टेज ऑफ स्लीप, 1 to 2 cycles per second, उस गहरी नींद पर हम सब कुछ भूल जाते हैं दोस्तों। माई पोस्ट, माई पोजिशन, माई डेजिग्नेशन, माई नेम, माई कास्ट, माई क्रीड, माई जेंडर, एवरीथिंग वी फॉरगेट, and we are into that energy consciousness. हम लोग उस energy level पर आते हैं। आज आप सुबह से हम लोग को सुन रहे हैं, सहन कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं। रात को आपको अच्छी नींद आई होगी। कितनों को ज्ञान सरोवर में रहते हुए बड़ी अच्छी नींद आई, वो जरा हाथ उठाओ। हाँ, बहुत अच्छा। अगर इतनी अच्छी नींद है और नींद इतना प्यारा गिफ्ट है दोस्तों, तो ब्रह्मा कुमारी इसमें मेडिटेशन के लिए 4 बजे क्यों उठाते हैं? फिर सोते रहे ना खर्राटे मारकर। अगर नींद इतना सुंदर गिफ्ट है तो मेडिटेशन में 4 बजे उठने के लिए क्यों कहते भाई, सोते रहे? क्योंकि दोस्तों नींद में हमारा शरीर और मन को विश्राम जरूर मिलता है, लेकिन नींद से हमारे संस्कार चेंज नहीं होते। अंदर जो डर, भय, चिंता, अहंकार, ईर्ष्या, ये डिलीट नहीं होता है। तो इस वायरस को निकालने के लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना जरूरी है। एंड पीपल हु डू मेडिटेशन, फायदा यह होता है कि जो 6-8 घंटा सोते हो ना, कितना घंटा सोना इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स अ क्वालिटी ऑफ स्लीप। 4-5 घंटे में आपका मन एकदम डेल्टा स्टेज पर आ जाएगा, और उस डेल्टा स्टेज पर आप जितना
पिकोगे उतना आपको फिर और ज्यादा सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है ना, टाइम, वो टाइम बच जाता है। और प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी के लिए टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और एक बहुत बड़ी बात, मेडिटेशन करना इसलिए जरूरत है क्योंकि आज जो सबसे बड़ा जो डर है, भय है, एज पर डॉक्टर्स उन्होंने उस इवेंट को 100 out of 100 दिया है, दैट इज द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय, सबसे बड़ा डर। पोस्ट कोविड जब मैं लोकल ट्रेन मुंबई में यात्रा कर रहा था तो मैंने देखा एक भाई सामने बैठा था, मास्क वास्क पहन के बैठा था। थोड़े देर कर मैंने क्या देखा, वो व्यक्ति क्या करता है, मास्क को निकालता है, गुटखा खाता है, फिर मास्क को लगा देता है। मैंने कहा वेरी हेल्थ कॉन्शियस, राइट। आई वॉज डूइंग अ प्रोग्राम फॉर द इंडियन एयरफोर्स बैंगलोर यलंका। तो जब मैं ऑडिटोरियम में जा रहा था तो विंग कमांडर मेरे साथ चल रहे थे, मुझसे पूछा सर आपको पता है आप किसको एड्रेस करने वाले हैं। मैंने कहा यस आई एम अवेयर द पीपल फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। बोला सर इसमें बहुत सारे पायलट्स हैं जो MiG-21 सुखोई को उड़ाते, पता उनको सबसे बड़ा डर कौन सा है। मैं कहा हमें नहीं पता है, आप बताइए। बोला सबसे बड़ा डर इज द फियर ऑफ डेथ, द सुपरसोनिक जेट, छोटा सा गलती किए चकनाचूर हो जाएंगे, प्लीज हेल्प देम आउट टू कम आउट फ्रॉम दिस फियर। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूं। तो जब मैं सेल्फ के बारे में बता रहा था, मैंने ऑडियंस से पूछा भाई सबसे बड़ा डर कौन सा है, सभी ने महसूस किया मृत्यु का भय। एक पायलट खड़े होकर कहता नो सर आई डोंट फियर डेथ, मुझे मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं है। तो मैंने उनको देखकर कहा, मैंने कहा सर आप जो कह रहे हो ना एकदम राइट कह रहे हो, आपको आपकी मृत्यु का भय इतना नहीं होगा जितना आपका अपने फैमिली मेंबर्स बच्चों का डर होगा, एम आई राइट। वो सोचने लगे, उनकी पत्नी साइड में बैठी थी, वो खड़े होकर कहती है तुमको क्या पता, तुम तो बस वो MiG-21 में बैठकर उड़ जाते हो, लेकिन जब तक तुम नीचे नहीं उतरते हो आपने कभी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश की है क्या। डिशम 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 World War III, किसी को भी अपनी मृत्यु का भय नहीं होता है, ना आपको है ना मुझे है, बट वी सर्टेनली फियर द डेथ ऑफ अ क्लोज्ड वंस। तो ये डर भय को निकालने के लिए अप्लाइड नॉलेज होना बहुत जरूरत है। क्या मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 7th standard बेसिक फिजिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसे हम प्रोफेशनल्स के लिए प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी के साथ वी शुड बी मोर इफेक्टिव, इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि सारी एनर्जी हमारे अंदर है, उसको इमर्ज करना बहुत जरूरत है। इसे स्वामी विवेकानंद राजयोग में के लिए कहते हैं, एजुकेशन इज नॉट द फिलिंग ऑफ अ वेसल बट इट्स इग्नाइटिंग द लाइट विद इन। और फिर स्वामी जी कहते हैं, इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द सेल्फ। इफेक्टिव बनना। मुझे याद आता एक बार मैं एक इंजीनियर्स ऑफिस में सेशन के लिए गया था, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो जब मैं वो गया तो चीफ इंजीनियर के ऑफिस में मैं गया, जैसे ही मैं गया तो बहुत सुंदर सीन देखा वहां पर, चीफ इंजीनियर साहब बैठे थे, चारों तरफ उनके जूनियर इंजीनियर्स, और टेबल में इतने सारे फाइल्स पड़े थे और इंजीनियर साहब बहुत भड़क रहे थे सब पर। तो जैसे ही मैं गया तो शांत हुए, बोला सर सर बैठो बैठो, और फिर बहुत प्यार से मुझे कहा आपका स्वागत है, और फिर कहा ये तनाव प्रबंधन ना बहुत जरूरी है स्वामी भाई, ये लोग हमें इतना तनाव देते कुछ पूछो मत। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा सर किस बात का तनाव है, अरे इनसे पूछो ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल, भाई असेंबली चल रहा है तो आंसर दैट क्वेश्चंस ऑफ द मिनिस्टर, और वो फाइल नहीं मिल रही है, कब से ढूंढ रहे हैं, कुछ ठीक से नहीं रखते, इतनी जोर से वो चिल्लाने लगे। तो मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैं शांत रहा। तब तक वो ऑफिसर आए, बोला सर ऑडिटोरियम में सब लोग जमा हो गए हैं तो आप सेशन के लिए आ सकते हो। तो मैंने कहा सर हम चले, बोला हाँ हाँ स्वामी भाई आप चलिए, मैं अटेंड करने का मेरा बड़ा मन था ये, लेकिन ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे, फिर उन पर भड़कने लगे। तो मैंने कहा सर देखिए मैं एक घंटे का लेक्चर है हमारा, उसमें लास्ट जो समरी जो है कि वी शुड डू मेडिटेशन टू मैनेज अवर स्ट्रेस, मतलब एक घंटा मैं बोलूंगा लेकिन उसका सार तो यही होगा। तो एक काम करते हैं, अगर आप नहीं आ सकते तो मैं एक मिनट आपको अभी मैं मेडिटेशन करवा देता हूं। बोला हाँ हाँ स्वामी भाई ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत जरूरत भी है। तो मैंने सबको कहा, जो जूनियर लोग बैठे मैंने कहा बैठ जाइए सब लोग, और उनको भी कहा बस मैंने एक मिनट का टाइम था मेरे पास। Like I'm different from this body, a point of light, a point of energy. I'm a very peaceful being. मैं शांत स्वरूप हूं, ये मेरा स्वधर्म है।
बस इतना बोल के मैं शांत हो गया। मैंने कहा ओम शांति, तो उन्होंने भी कहा ओम शांति और करके मैं निकला। जैसे ऑडिटोरियम में पहुंचा तो उन्होंने स्वागत वागत किया, और जैसे ही मेरे इंट्रोडक्शन कर रहे थे मैंने अचानक देखा वो चीफ इंजीनियर साहब, उसके पीछे पीछे वो सारे लोग भी आ गए। उन्होंने आते ही कहा सर कमाल हो गया, कमाल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला बस मैं आपसे एक प्रश्न पूछने के लिए आया। मैंने कहा क्या कमाल हुआ, क्या प्रश्न है? बोला हम लोग आधा एक घंटे से वो फाइल ढूंढ रहे थे, वो फाइल मेरे ही सामने पड़ी थी। जैसे ही आपने मेडिटेशन कराया उसके बाद मैंने बस एक दो फाइल निकाला और मेरे को मिल गई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैं आधे एक घंटे से बड़े शिद्दत से ढूंढा तो फाइल मिल क्यों नहीं रही थी? मैंने कहा सर बहुत सिंपल है, साइकोलॉजी में देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज इमोशनल फॉगिंग। जब हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस हो जाता है ना, डर भय चिंता और टाइम प्रेशर जब होता है तो हमारे सामने एक फॉगिंग हो जाता है। जब फॉगिंग इमोशनल लेवल पर हो जाती है तो हमारे आंखों के सामने जो फाइल है वो दिखता नहीं है, है पड़ा वो दिख नहीं रहा है। फिर उसने कहा नहीं आना, आई विल अटेंड दैट वन कंप्लीट लेक्चर बिकॉज इट रियली वर्क्स। सो वी हैव टू बिकम मोर इफेक्टिव। काम कराने के चक्कर पर हम अपने बीपी कैंसर, जैसे आज हम डॉक्टर प्रेम मसन जी को सुन रहे थे, हम काम तो कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं। वंस अ न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर, he was transferred from one office to the other office. जैसे ही अपने कैबिन में गए, बहुत सुंदर कैबिन था तो उनको प्यास लग रही थी तो बेल रखा था, बेल बजाया, so the pune entered the office. तो उसने उस pune से कहा can you get me a glass of water, आप एक ग्लास पानी लेकर आ सकते हो? तो pune ने कहा मेरा काम पानी वानी लेकर आने का नहीं है। तो मैनेजर ने कहा फिर आपका काम क्या है? बोला आपका काम है, मेरा काम है आप तक फाइल्स पहुंचाना, आपसे फाइल्स लेकर जाना। तो मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा आपका काम है फाइल्स लेकर आना, फाइल्स लेकर जाना। बोला ओके, बोला आज मैं पहली बार यहां पर आया हूं तो आई हैव टू स्टडी ऑल द फाइल्स, विच इज द ओल्डेस्ट फाइल इन दिस ऑफिस? बोला 1965। बोला कैन यू प्लीज गेट मी द फाइल ऑफ 1965। अब प्यून के पास कोई ऑप्शन नहीं था, ही वेंट टू द स्टोर रूम, ब्रेक्स इज सेट फॉर 1.5 आवर्स, गेट्स द फाइल ऑफ 1965। तो ही अप्रिशिएट्स हिम, मोटिवेट्स हिम, वाओ वेरी गुड, यू आर वेरी प्रोडक्टिव, वेरी एफिशिएंट, कीप इट अप, एक्सलेंट। दूसरा दिन वो बेल बजाता है, प्यून एंटर्स, तो वो कहता है कैन यू गेट मी द फाइल ऑफ 1966 टुडे? फिर वो जाता है, फिर उसको अप्रिशिएट करता है। तीसरा दिन जैसे ही मैनेजर रिंग्स द बेल, द प्यून एंटर्स विद अ ग्लास ऑफ वाटर, सर पहले पानी पीजिए सर। वी हैव टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स बट वी हैव टू बी इफेक्टिव। ऐसे नहीं कि रिटायरमेंट में हमारी हालत एकदम गंभीर है, नो, वी हैव टू प्ले अ सेकेंड इनिंग्स ऑल्सो विद एब्सोल्यूट जॉय एंड हैप्पीनेस। इसे पहला तो यह है, और एक के साथ तीन फायदे हमें मिलते हैं। जब हम सेल्फ को समझते हैं, इस पावर स्टेशन को एक्टिवेट करते हैं, और जब हम अपने स्वधर्म में टिकते हैं तो तीन फायदा होता है। पहला फायदा इज हेल्थ, दूसरा फायदा इज वेल्थ, और तीसरा फायदा हैप्पीनेस एंड सर्टनली सक्सेस टिल द लास्ट सेकेंड ऑफ आर लाइफ। सबसे पहला हेल्थ, आप में से कितनों को लगता है हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी फॉर ऑल ऑफ यू? वो जरा हाथ उठाएं। वाओ, हेल्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने सुना होगा जान है तो जहान है। एक बार हम इंडियन नेवी को प्रोग्राम कर रहे थे तो सारे कैडेट्स बैठे थे, तो जब मैंने कहा जान है तो एक कैडेट खड़े होकर कहता सर जहाज है, एंड द कमांडर वॉज वेरी हैप्पी, राइट आंसर, राइट आंसर। तो ये बहुत सुंदर जहाज है, जहाज का ध्यान रखना भी बहुत बहुत जरूरी है। तो हमारे शरीर में जो भी सिस्टम है ना, द सिस्टम रन्स बिकॉज ऑफ एन इमोशनल वोल्टेज। वो इमोशनल वोल्टेज बहुत जरूरी है। जैसे हमारा दिल, सो द एक्चुअली अवर हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप, उसका काम ही है पंप करना। हमारे दिल को अच्छी तरह से, इफ आई वॉन्ट टू मेक माई हार्ट वेरी प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट, तो उसको एक इमोशनल वोल्टेज देना पड़ेगा। बताइए दोस्तों, हमारे दिल को अच्छी तरह से काम करने के लिए कौन से इमोशंस की जरूरत है? कुछ तो बोलिए। हाँ, हमारे दिल को अच्छी तरह से काम करने के लिए प्यार की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, इट इज रिक्वायर्ड, इज लव। अच्छा, जब वो प्रेम नहीं मिलता है ना तो ऑटोमेटिकली फिर वो हार्ट पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। सो प्लीज
people who are type A personalities. Type A personality are very successful people. Swaminathan is also type A personality. मैं कुछ features आपको बताऊंगा. आप में से कौन कौन type A personality है, मुस्कुराते हुए हाथ उठाना. And we'll create a very wonderful quality club. पहला प्रश्न, आप में से कितने लोग हैं जिनको punctuality, discipline बहुत अच्छा लगता है, वो मुस्कुराते हुए हाथ उठाएं. Very good, very good. आप में से मेरे कितने दोस्त हैं जिनको अपना काम बहुत systematic, perfect, organized करना अच्छा लगता है, वो जरा हाथ उठाएं. बहुत अच्छा, very good. दो में हाथ नहीं उठाए तो तीसरे में जरूर हाथ उठाइएगा. आप में से मेरे कितने दोस्त हैं जिनको स्वच्छ भारत कैंपेन बहुत अच्छा लगता है, घर स्वच्छ होना चाहिए, ऑफिस स्वच्छ होना चाहिए, रेलवे स्टेशन स्वच्छ होना चाहिए, वो जरा हाथ उठाए. वाह, हाथ नीचे रखिए. ये तीनों में अगर आपने एक में भी हाथ उठाया होगा, यू आर अ प्रोबेबल केस फॉर हार्ट अटैक. हार्ट अटैक जरूर आएगा, तैयार रहिएगा. एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट का विजिटिंग कार्ड रखिएगा, थोड़ा दवाई ववाई रखिएगा और बिल पेपर जरूर बना के जाइएगा. स्वामी भाई क्या बात करते हो, हेलो हेलो हेलो, प्लीज डू नॉट गेट मी रॉन्ग, प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी. अगर आप पंचुअल और डिसिप्लिन हो तो बहुत अच्छी विशेषता है, प्लीज सस्टेन दैट विशेषता. क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, वॉट स्ट्रॉन्ग इन इट बाबा. अगर आपका काम परफेक्ट ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी क्वालिटी है. उसके कारण आपको और स्वामी भाई को हार्ट अटैक नहीं होगा. आपको और स्वामी भाई को हार्ट अटैक तब आएगा व्हेन आई एक्सपेक्ट द होल वर्ल्ड टू बी लाइक मी. हार्ट अटैक जरूर आएगा, राइट. आई वॉज डूइंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर CISF. तो CISF में सुइसाइड के साथ फैट्रिसाइड भी होता है. उनके पास गन होता है ना, तो अपनों को मारने लगते वो. तो ब्रह्मा कुमारी बहुत सारा प्रोग्राम्स उनके लिए करती है. आप लोग आने के पहले पिछले हफ्ते फ्राइडे सैटरडे संडे दे वेर अराउंड 500 पीपल फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ कंट्री. एंड उस 500 में से दे वेर अराउंड 250 ऑफिशियली नॉमिनेटेड बाय द डिफेंस फोर्सेस. तो मैं उनको ये अनुभव बता रहा था कि वी वर डूइंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम विद CISF. तो मैंने सबसे पूछा, भाई गुस्सा आता है? सबने हाँ जी सर गुस्सा आता है. तो हमने पूछा किस पर गुस्सा आता है, कोई बोल ही नहीं रहा था. मैंने कहा बोलिए बोलिए किस पर गुस्सा आता है. तो एक ने खड़े होकर कहा, सर ऑफिशियल प्रोग्राम है सर, पब्लिक में कैसे बोल सकते. मैंने कहा आप इधर आइए, नजदीक आकर बताइए किस पर गुस्सा आता है. तो नजदीक आया और फिर मुझको कहा, स्वामी भाई सबसे ज्यादा तो कमांडेंट साहब पर ही गुस्सा आता है. और कमांडेंट साहब साइड में बैठ के मुस्कुरा रहे. तो मैंने कहा, सर पता है आपको किस पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? हाँ हाँ बताओ किस पर गुस्सा आता है. मैंने कहा सर आप पर ही सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, ऐसे बता रहे. और वो जवान भाई, अरे स्वामी भाई आपने पब्लिक कर दिया. मैंने कहा नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग हो तो सब ठीक हो जाएगा ना, तनाव प्रबंधन का प्रोग्राम चल रहा है, राइट. अब कमांडेंट साहब भी खड़े, क्यों भाई मुझ पर क्यों गुस्सा आता है? मैंने कहा बोलो क्यों गुस्सा आता है. बोला सर 6 महीने साहब छुट्टी नहीं देते हमें, इससे आप पर गुस्सा आता है हमको. तो हमने कमांडेंट साहब कहा, सर छुट्टी दे दीजिए ना, क्यों पकड़ के रखते हो छुट्टी इनका. बोला स्वामी भाई मेरा अपना परिवार है, मेरे अपने बाल बच्चे हैं, तो मुझे अपने बच्चों से मिलने का मन नहीं करता क्या? मन तो करता है, तो जब मुझे मन करता है तो मैं इनको क्यों नहीं छोड़ूंगा. आई कैन अंडरस्टैंड देयर इमोशंस. मैंने कहा फिर सर छुट्टी क्यों नहीं देते हो? बोला स्वामी भाई आप इस जवान से पूछिएगा कि पोस्ट कोविड में एयरपोर्ट में कितना पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ गया है, आप पूछो. अब दूसरा प्रश्न पूछो कि कितना सैंक्शन स्ट्रेंथ है और कितने अवेलेबल है अभी. तीसरा पूछो, हर दिन दिल्ली से थ्रेट मैसेजेस, बॉम्ब थ्रेट मैसेजेस मिलता है. मैं छुट्टी देना चाहता हूं लेकिन कैसे दूं? तो मैंने पूछा जवान से, देखो सर छुट्टी देना चाहते हैं. बोला हाँ सर इसके बारे में तो मैंने कभी सोच ही नहीं था. मैंने कहा देखो कमांडेंट साहब छुट्टी नहीं देते इससे गुस्सा आना इट्स अंडरस्टैंडेबल, लेकिन घर में बच्चों पर तो गुस्सा नहीं करना चाहिए ना. हाँ जी सर. मैंने आप में से कितने लोग हैं जो बच्चों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करते हैं? तो एक ने हाथ उठाया. मैं कहा सचमुच बच्चों पर गुस्सा नहीं करते? बोला सर आज तक मैंने अपनी बच्ची पर गुस्सा नहीं किया सर. मैंने कहा मैं फैमिली में फोन करके पूछूंगा. बोला सर आप वेरीफाई कर लीजिएगा. सचमुच बच्ची पर गुस्सा नहीं किया? बोला नहीं. मैंने कितनी बच्ची है? बोला सर एक बच्ची है. मैंने कहा उम्र क्या है? बोला सर 8 महीने की छोटी बच्ची है सर. मैं खड़े हो जाइए. हाँ जी सर. मैं कितने महीने की बच्ची? बोला सर 8 महीने. मैं कहा लास्ट टाइम कब मिले थे? बोला सर 6 महीने से तो छुट्टी नहीं दे रहे कमांडेंट सर. अब 8 महीने में तो 6 महीने यहां पड़े आप. मैंने क्यों बच्ची पर क्यों नहीं गुस्सा करते? बोला सर दिल का टुकड़ा है सर, जिगर का टुकड़ा है, प्यार का टुकड़ा है सर. मैं कहा जब वो 8 साल की होगी तो भी तो प्यार का टुकड़ा ही होगी ना, जिगर का टुकड़ा होगी ना. बोला हां जी सर. प्लीज आजकल के बच्चे ना बहुत बुद्धिमान है, They are so expert in mobile, internet, Facebook, blah, 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 blah. But they are actually very, very emotionally sensitive. You know what's the reason? आप में से कितने लोग हैं जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो आपके माता पिता आपको इनलैंड में लेटर लिखकर भेजते थे और आप वो इनलैंड या पोस्ट कार्ड रिसीव किए हैं, पापा का प्रेम पत्र वो जरा हाथ उठाए, वाह कितने सौभाग्यशाली आप लोग हैं। लेकिन आपके बच्चे इतने सौभाग्यशाली नहीं है। इसे माई सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट इज, यहां भगवान के घर बैठे हो ना, तो एक दो दिन में जब टाइम मिलेगा ना तो अपने बच्चे के नाम पर बहुत प्यार भरा प्रेम पत्र लिखना, पोस्ट करना। इट विल गेट स्टैंड फ्रॉम द अबू रोड पोस्ट ऑफिस, इट विल गो टू योर पोस्ट स्टेशन, और जब बच्चे को मिलेगा ना, जिंदगी भर आपका प्रेम पत्र उसका दिल का ख्याल रखेगा, उसके इमोशंस का ख्याल रखेगा। कोई व्यक्ति अचानक आत्महत्या नहीं करता है, ऐसा नहीं होता है कि आज सुबह उठे तो थोड़ा सा आत्महत्या करने का मूड आ रहा है, चलो भाई अटेम्प्ट करते, ऐसा नहीं होता है। बहुत समय से आत्मा को खुशी नहीं मिली है। इसे एनहैंसिंग सेल्फ एस्टीम में सेल्फ की क्वालिटीज, जो हमारी अपनी क्वालिटीज है, कोई मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, राइट। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हेल्थ। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आपका सारा दिन में आपके इतने सारे दिनचर्या होते, आपके सारे मीटिंग्स डिजाइन होते कि आज मुझे ये मीटिंग अटेंड करना, ये मीटिंग अटेंड करना, ये मीटिंग अटेंड करना, तो आप इसको अप्लाई करिएगा मेडिटेशन को। सुबह उठिएगा, मन से उस यात्रा करिए, कहां कहां मीटिंग है, मुझे किस किस से मिलना है। दिनचर्या के साथ मनचर्या को भी सेट करिएगा, सेट करो आप क्या सारा दिन कैसा मेरा सबसे आप जा रहे, पहले से मन से वहां यात्रा करके जाइएगा, सारा डिस्कशन चल रहा, मतभेद हो रहा है, लेकिन आपका मन बहुत शांत। इसे बहुत जगह हम देखते हैं, है ना, एंगर फ्री जोन लिखते हैं, बट इट्स नॉट जस्ट एंगर फ्री जोन, आपको लिखना चाहिए पीसफुल जोन, लवफुल जोन, एंड दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना हेल्थ का ध्यान रखते हो, वेल्थ का ध्यान रखते हो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हैप्पीनेस। आई जस्ट टेक टू और थ्री मिनट्स एंड वाइंड इट अप, दो तीन मिनट एक कहानी बताकर मैं वाइंड अप करता हूं। एक बार एक राजा था जो अपने प्रजा के बारे में बहुत उनको खुशियां देता था। तो एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंत्री, मैं इतने राज्य भ्रमण करता हूं तो मुझे बहुत जगह बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, और मैंने बहुत सारे गिफ्ट तो खोला भी नहीं है मैंने अभी तक, तो मैं चाहता हूं ये गिफ्ट मैं प्रजा को दूं और आई विल इंक्रीज देयर हैप्पीनेस इंडेक्स। तो मंत्री ने कहा दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, तो पूरे राज्य में ऐलान किया गया। तो राजा आया और इतनी लंबी लाइन थी लोगों की, तो सबको वो जो जो गिफ्ट था ना वो दे रहा था। तो उस पूरे लाइन में एक भिखारी खड़ा था, तो भिखारी ने जब राजा को ये गिफ्ट देते हुए देखा तो उसने महसूस किया कि जिंदगी भर मैं मांगता रहा इसलिए मैं कभी खुश नहीं हुआ। ये राजा देखिए वो दाता है, देने वाला है, उसके चेहरे में इतनी खुशी है। फिर उसके मन में संकल्प आया कि मैं क्या दे सकता हूं, मैं तो भिखारी हूं। तो अचानक उसको याद आया कि मैं राजा की तरह, मेरे पास गिफ्ट विफ्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मैं सहयोग दे सकता हूं। तो उस भिखारी ने क्या किया, उसको जो पीछे वाला जो व्यक्ति था ना उसको आगे बढ़ाया, बोला आप आगे चले जाइए। जैसे वो पीछे वाला आगे गया ना तो उसने बहुत प्यार से उसको एक्नॉलेज किया, थैंक यू बोला। जैसे ही वो बोला ना तो भिखारी को इतना अच्छा लगने लगा, बोला अरे हैप्पीनेस को बढ़ाने का इतना ईजी तरीका है। वो पीछे 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 जाते हुए लास्ट में खड़ा रहा, और लास्ट में खड़े होने थे उसकी इतनी खुशी बढ़ गई कि अब किसी से मांगने का मन नहीं किया और वो सीधे अपने घर चला गया। तो जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री आई वॉज वेरी हैप्पी डिस्ट्रीब्यूटिंग द गिफ्ट, तो मुझे लगता है हमारे सारे प्रजा भी संतुष्ट और खुश है ना। तो मंत्री ने कहा, राजन सभी लोग तो आए थे लेकिन भिखारी लाइन में खड़ा था, वो हर एक को आगे आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर वो लास्ट में खुद घर चला गया। तो राजा ने कहा, मंत्री आप जाओ और भिखारी को बुलाकर लेकर आओ, उसने हमारा हमसे गिफ्ट क्यों नहीं लिया। तो जब मंत्री भिखारी के घर पर गए और भिखारी को कहा, देखो राजन से गिफ्ट ना लेना इट्स अ काइंड ऑफ अ डिसरिस्पेक्ट, तो राजा भी आपको बुला रहे हैं तो यू शुड हैव अ वैलिड रीजन कि आप घर वापस क्यों गए। तो राजा के पास आए तो राजा ने उसको कहा, मैं सबको गिफ्ट दे रहा था, आपने गिफ्ट क्यों नहीं लिया। तो भिखारी ने कहा, राजन आज मैं आपको देख रहा था कि आप सबको गिफ्ट दे रहे थे और आप इतने खुशी में थे, तो मुझे मन में संकल्प आया कि मैं भी आपको कुछ दूं, ऐसे आपको आपके लिए कुछ लेने के लिए मैं घर में आया था। तो बोला, अच्छा बताओ मेरे लिए क्या लेकर आए हो।
तो भिखारी ने एक फटा फूटा ना कंबल था, उसने वो राजा को दिया। और बोला, राजन बस यही मेरे पास है जो मैं आपको देना चाहता हूं। और बहुत प्यार से वो राजा को देता है। आप बताइए, बड़ा दानी कौन है, राजा या भिखारी? यस, हमारे सब, हमारे पास सब कुछ है और हम कुछ दे रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? लेकिन यहां पर जो मैंने देखा, सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन इन द ब्रह्मा कुमारी जो आपने देखा यहां पर, 27 years before when I came back, मुझे लगता था इतने जो सेवाधारी हैं, they are paid something. But all those people whom you see, on the stage, behind stage, भोजन बना रहे, none of them have been paid even a single naya paisa. यहां जितने लोग भी आते सेवा करने के लिए, वो अपने पैसे से ट्रेन या फ्लाइट लेकर आते हैं, सेवा करते और जाते हैं. And this is a very beautiful model. सिर्फ ये बात नहीं, आपने देखा होगा यहां पे कितने भाई बहने समर्पित हो जाते, they dedicate their life. क्यों? The reason is one simple thing. It's not always money that motivates us. It's actual unconditional love that is very, very important. तो मैं चाहता हूं आज से एक खजाना जो हम जरूर जरूर बढ़ाएं, और वो है दुआएं, blessings. जरूरी नहीं कि हम किसी को पैसे दान में दें, but what is important is हमारे अंदर जो खजाना है, शांति का, प्रेम का, खुशी का, शक्ति का, आनंद का, परमात्मा से बहुत भरपूर इसको स्टॉक करें, और जितने भी लोग हैं उनको हम बांटें, विद अ स्माइल, विद अ स्वीट वर्ड्स, विद अ पॉजिटिव फीलिंग्स, विद ऑल दिस पॉजिटिव वाइब्रेशंस. आई थैंक ऑल ऑफ यू एंड माय प्रेयर्स टू द ऑलमाइटी टू ब्लेस ऑल ऑफ यू, योर किड्स, योर ग्रैंड चिल्ड्रेन, योर टीम, विद लॉट्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस. थैंक यू. ओम शांति.
अपने आत्मसम्मान को बढ़ा के अपने जीवन को कैसे कलात्मक बनाए. स्वामी भाई जी, आपने बहुत इजी इजी मेथड्स बता के हमें ऊर्जावान बना दिया. आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद. और अभी मैं निमंत्रित करती हूँ अपने कार्यकाल का संक्षिप्त में अनुभव सुनाने के लिए मिस्टर गोपाल प्रसाद आर्यर. मिस्टर गोपाल प्रसाद आर्यर सभा में हो तो आप अपना संक्षिप्त में कार्यकाल का अनुभव हमारे सामने शेयर करेंगे. आप मुख्य जिला अधिकारी हैं, वर्तमान में नेपाल के दोती डिस्ट्रिक्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हो. नेपाल के कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट में आपने प्लास्टिक बैग्स को बैन करने में अपना विशेष योगदान दिया है. तो आप संक्षिप्त में हमारे सामने अपने अनुभव को शेयर करें, मिस्टर गोपाल आर्यन.
धन्यवाद. सब महानुभाव में मैं हृदय से अभिवादन करता हूं. मैं नेपाल में नेपाल सरकार के, विशेष तो नेपाल प्रशासन सेवा से करीब 28 वर्ष से काम कर रहा हूं. इस दौरान में मैं डिफरेंट पोजीशन में, डिफरेंट एरिया में काम कर रहा हूं. बेसिकली आई हैव वर्क्ड इन इलेक्शन मैनेजमेंट, मल्टीलैटरल ट्रेडिंग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नेंस एटसेट्रा. जहां तक यह आज के हमारे वर्कशॉप के थीम है, सेल्फ सॉवरेंटी इन रिलेशन टू स्पिरिचुअल फाउंडेशंस, मैं समझते हूँ इसने हमारे क्षेत्र एडमिनिस्ट्रेशन जो बहुत रुखा सुखा है, नियम कानून विधि और प्रक्रिया के बहुत रेस्पेक्ट करके काम करना पड़ता है, इसमें भी हमारे लिए बहुत हमारे काम के लिए गाइड करने के बहुत ज्यादा शक्ति है. इसलिए मैं यहाँ इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहा हूं। करीब 28 वर्ष के सेवा के दौरान में मैंने विभिन्न क्षेत्र में काम किया है। मेरे इनर बिलीफ जैसे भी वो यो रहा कि सुप्रीम अथॉरिटी ने, गॉड ने हमने कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टाइम में गाइड कर सकते हैं। प्रशासन करनी सहज काम नहीं है। वी हैव टू मैनेज डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस, डिफिकल्ट कॉन्टेक्स्ट। व्हेन यू आर इन ए रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस टू फाइंड आउट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस, यू हैव टू इग्नाइट योर रीजन एंड एट दैट पॉइंट आई ऑलवेज रिमेंबर द गॉड, प्लीज हेल्प मी इन दिस सिचुएशन, व्हाट इज द राइट और व्हाट इज द रॉन्ग, हाउ आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो दिस वर्कशॉप कैन हेल्प अस टू मेक मोर स्पिरिचुअलिटी, हाउ इट कैन गाइड अस। आई एम टेकिंग दिस वर्कशॉप इन दिस वे। देर आर सो मेनी इवेंट्स आई हैव आई मीन फेस्ड डिफिकल्ट सिचुएशन एंड टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द स्पिरिचुअल फाउंडेशंस। मैं एक इवेंट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। मेरे हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, सो माफ कीजिए। जब मैं कंचनपुर जिला में प्रमुख जिला अधिकारी के रूप में काम कर रहा है, एक दिन मैं अपने ऑफिस में रहा हुआ है। उस वक्त ऑफिस में विभिन्न किस्म के काम के भी चाप था। एक करीब 25 वर्ष की लड़की, 25 वर्ष उम्र की लड़की मेरे ऑफिस के बाहर बड़े कड़ा कड़ा शोर से चिल्ला रहा था। देन आई इमीडिएटली ओपन माई डोर एंड आस्क्ड हर व्हाट इज हर प्रॉब्लम। आई इन्वाइटेड हर इन माई ऑफिस एंड आस्क्ड हर व्हाट इज योर प्रॉब्लम, हाउ आई कैन हेल्प यू। She has the demand that no one is responding me properly. I am in a real difficult situation. My family also is not supporting me. And I went to the police office. No one is properly responding me. Instead of responding me, some policeman, misbehaved me. So you have to fire them immediately within 1 hour. Otherwise, I may take any actions. I can take a decision of suicide like that. She told me in that situation. I was quite confusing. What is the reason? The behind, I can inquire the police department, what the problem you are facing here. You will get justice. Please be silent, be calm, and tell me your story. But she was not, waiting for that. She has only the demand that the police officials, including superintendent of the police, needs to be fired immediately within an hour, otherwise anything can be happen. And if it is not decided, then I am recording all these voices and I can post it in your in my Facebook, and you also could be in a trouble like that. So I was wondering what is happening over there. No one is, listening it properly. What's the reason? Then I immediately asked myself how I can deal these situations. And all of a sudden, my soul, told me like in that way that some mental problem might be there. So you can deal these situations from this perspective. Then immediately I wrote a small note to the SP and sent through my messenger, and I asked him to come my office as soon as possible. Then superintendent of the police ye pata laga tha ki uske us ladke ke kitne bar uske parivar ke saath mein ये समस्या के लिए सफल करता है कर रहा है despite the various types, various days of exercises, the problem was not resolved. So some police staff, they did not respond properly in the latter stage. And she came in that situation all of a sudden. Then we make a decision that we can collect some evidences from the past records that some policemen are, you know, taking actions in some instances, then we can show her that police staff are taking actions against your charge, and we can help you for the, you know, better treatment. We can discuss with your family members, and we can solve your entire problems. In this way, I mean, we handle the situations. What the essence here is that when you come to the, you know, complex context, complex situations, individuals also can get help from the, you know, spiritual foundation. It's my experience that I want to share with you. Spirituality ne, you know, humne bahut 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 guidance ke kar sakte hain. Administration ke baad hum niyam kanun aur reason ke saath saath mein jun kisim ke people ke understand karne ke जिन किस्म की भावनाओं की आवश्यकता पड़ते है तो भावनाओं हमने स्पिरिचुअल फाउंडेशन ने ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं. जिन स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑलवेज हैव टोल्ड अस दैट धर्म अर्थ कर्म पक्ष जीवन का पुरुषार्थ है, वसुधैव कुटुंबकम हमारा सिद्धांत है, परोपकार पापाय परोपकार पुण्याय पापाय परवीडनम, यह इसके जिन संदेश है वो संदेश हमने स्पिरिचुअलिटी से ग्रहण कर सकते हैं. इसलिए दिस टाइप ऑफ वर्कशॉप कैन इनलाइटन अस टू मेक अस मोर इफेक्टिव, मोर एफिशिएंट, मोर प्रोडक्टिव. थैंक यू.